धवला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं साहु वच्छायरिये अरहंते वंदिऊण सिद्धेवी जे पंचलोगवाले वोच्छंबंदस्सामित्तम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का यह तृतीय खंड है, तीसरा, और इसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। पहले खंड का नाम क्या था? जीवस्थान। और दूसरा वो पुस्तक का नाम था, उसके अनुयोग थे। देखो, सत प्ररूपणा के दो पुस्तकें, फिर द्रव्य प्रमाण अनुगम, फिर का क्षेत्र स्पर्शन काल, वो चौथी पुस्तक में हुआ है ना। छठवी चूल्हे का थे, पांचवे में तो बाकी स्पर्शन के बाद जो होता है ना, नाना जी उनके अपेक्षा काल अंतर भाव अल्पभूत वगैरह। दूसरे पुस्तक, दूसरा खंड सातवीं पुस्तक में था नहीं, ये तो अठवा है। क्षुल्लक बंद, शुद्र बंद, खुद्दा बंद, जिसको खुद्दा बंद नाम था ना, याद है ना। हाँ, वही तो, वो दूसरा खंड था वो। ये तीसरा खंड है, इसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। ख्याल में आई बात? वो सब मिलकर एक खंड हुआ, एक जीव स्थान। दूसरे में नहीं, सातवें पुस्तक में दूसरा खंड पूरा हुआ। हाँ, तीसरी पुस्तक में तीसरा खंड, आठवीं में दूसरी ने अन्य। हाँ, आठवीं पुस्तक में। अभी देखो, ये बंध स्वामित्व विचय ने बंध के स्वामित्व संबंधी चर्चा चलेगी। अलग अलग प्रकृतियों को पूछ रहे हैं, गुणस्थानों में अभी बता रहे हैं। यानी पहले हमने वो ज्ञानावरण से शुरू किया था, तो पांच ज्ञानावरण, फिर उसके जहाँ बंध विच्छित्ति होते उसके साथ जो जो प्रक्रिया उसको लिया। चार दर्शनावरण हुआ, उसके बाद निद्राओं को लिया, तीन निद्रा, और फिर उसके साथ बंध विच्छित्ति वाली प्रकृतियां लिया, फिर दो निद्रा अकेले लिए, दर्शनावरण हो गए। बाद में सातावेदनी लिया, सातावेदनी के साथ वो अकेला ही है, असाता के साथ फिर ले लिया, असाता की विच्छित्ति छठे में है, तो उसके साथ जो प्रकृतियां उसकी बात हो गई, तो वेदनी हो गई। फिर मोहनीय, मोहनीय में मिथ्यात्व लेना है, अनंतानुबंधी तो स्थान वृद्धि त्रिक गया, तो मिथ्यात्व को लिया। तो मिथ्यात्व के साथ जो पहले गुणस्थान के बंधे विच्छित्ति है 16 प्रकृति, उनकी चर्चा हो गई। हमको लेना मिथ्यात्व था, उसके साथ जो जो है उसकी सबकी बात बताई। अनंतानुबंधी तो हो गया, अब अप्रत्याख्यानावरण की बात चलेगी। तो अप्रत्याख्यानावरण की बंध विच्छित्ति कहाँ है? तो चौथे में है। तो उसके साथ बंध विच्छित्ति वाली प्रकृतियां कौन सी है? तो अन्य भी है, जो यहाँ तो आयु को छोड़कर बाकी पांच किलो लिया है, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक, औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ नारा सहनन, इन प्रकृतियों की बात यहाँ ली है। आयु को अलग से बताएंगे, क्योंकि आयु के लिए पहले से चौथे तक बनते ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तीसरे वाले को नहीं बनती है, इसलिए इनको अलग लिया। ये अभी उसमें से ये अपनी बात चालू हुई थी, पेज नंबर 45 में ये प्रश्न पूछा गया था, या 40 नहीं, उसके भी पहले, सॉरी, और प्रत्येक है ना, उनकी बात यही है। हाँ, 46 पर ही पूछा है, ये सब प्रकृतियां कौन बांधता है, कौन बंधक है, कौन अनबंधक है। तो उसके उत्तर में बताया था, मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत तक बंधक है। अब उस पर सारे प्रश्नों की चर्चा चली, कि कौन सा बंध पहले रुकता है, क्या उदय रुकता है, तो कषायों के बाबत में तो दोनों साथ में रुकते हैं और प्रत्यक्ष अनावरण के लिए चौथे में दोनों ही रुकते हैं साथ में। बाकी प्रकृतियों की बात फिर उन्होंने बताई थी, मनुष्य गति का बंध भी चौथे में रुकेगा, ये सभी प्रकृतियां, और गति गति का उदय तो चलेगा चौदहवें के अंत तक, वज्रषभ नाराज औदारिक शरीर अंगोपांग वगैरह का चलेगा तेरहवें के अंत तक, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का तो उदय तो चौथे में ही है उदय। चौदहवें में उसकी सत्ता है, उदय तो विग्रह गति में ही हो सकता है और विग्रह गति तो चौथे तक ही हो सकती है। ख्याल में आई ना बात? हाँ, कहीं पर भी मरण हो जाए तो, और आठवें में मरने वाला तो देव गति में जाएगा, वो देवगत्यानुपूर्वी का उदय होगा। यहाँ तो नारकी या देव मरकर मनुष्य में आते हैं सम्यक्त्व के साथ, उसकी चर्चा है यहाँ पर, चौथे में है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फिर पूछा गया था निरंतर बनती के कैसे बनती है, वो भी पूछा गया था। बंद ये कषाय अपने ध्रुव बंदी है तो निरंतर बनती है, और बाकी मनुष्य गति वगैरह ये कैसी प्रकृतियां है तो प्रतिपक्ष वाली है। तो नीचे के गुणस्थानों में तो उसको तो शांतर है, तीसरे चौथे वाले को देव नारकी के लिए वो निरंतर है, इस तरह से उसका अर्थ लेना है। हाँ फिर पढ़ू? अच्छा 47 हम फिर पढ़ते, कल हुआ था अपने, फिर दोबारा पढ़ते। देखो ये विच्छेद तो समझ में आया ना? हाँ, अभी आगे 47 पेज फिर दोबारा पढ़ते शुरू से। स्वोदय से बनती के परोदय से बनती है, तो अप्रत्यक्ष अनावरण चतुष्क आदि सबका स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि ऐसा होने में कोई विरोध नहीं। अब यहाँ कहेंगे स्वोदय परोदय क्यों कहा, एक एक कषाय लेना, क्रोध मान माया लोभ। तो अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध हाँ, बाकी के उदय हो रहे ना, वो ख्याल में आई बात? हाँ, इसलिए परोदय से भी बनती है, क्यों हमने देखा था क्रोध कर रहा है, यानी क्रोध का उदय है और बनते क्रोध मान माया लोभ सभी, इसलिए उसको कहेंगे अपने भी उदय में और पर के उदय में भी बनती है, ये उसका अर्थ है। विशेष यह है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि गुण स्थान में मनुष्य गति द्विक औदारिक द्विक एवं वज्रषभ सहनन का परोदय बंध होता है, क्योंकि देखो पहले दो गुण स्थानों में ये मनुष्य गति वगैरह प्रकृतियों को मनुष्य तीरेंज देवनार के कोई भी बांध सकते हैं, तीसरे चौथे गुण स्थान में बांधने वाले कौन है, तो देवनार की ही है। उसका अर्थ क्या है, मनुष्य गति के उदय में ये नहीं बंधेगी, किसको, तीसरे चौथे वाले को। यहाँ हम गुण स्थानों में विशेषता देख रहे हैं, पहले गुण स्थान वाला जो है मनुष्य गति के उदय में भी मनुष्य गति बांधेगा, परंतु तीसरे चौथे वाले गुणस्थान वाले मनुष्य वो मनुष्य गति नहीं बांधते, वो देवगति बांधते। इसलिए तीसरे और चौथे गुणस्थान वालों के लिए क्या कहेंगे, मनुष्य गति का बंध परोदय से होता है, यानी देवगति नरगति के उदय में होता है, और औदारिक शरीर अंगोपांग का बंध वैकिरिक शरीर अंगोपांग के उदय में होता है, ये उसका अर्थ है। और सहनन का बंध, वहां सहनन है ही नहीं तो अपना उदय की उसको भी परोदय कहेंगे। हाल में आई ये बात? अभी आगे बढ़ेंगे। अब शांतर निरंतर की बात है, अप्रत्यक्ष अनावरण चतुष्क का बंध निरंतर है, क्योंकि वे चारों प्रकृतियां ध्रुव बंदी है, अनादि से बनती रहती है, वो ध्रुव बंदी है। मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानपूर्वी का बंध मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्य दृष्टि से शांतर निरंतर है। ये शांतर निरंतर क्यों कहा, अकेला शांतर कहना था, क्योंकि पहले दो गुणस्थान वाले जो है, पहले गुणस्थान वाला चारों गति का बंध करता है, दूसरे गुणस्थान वाला तीन गतियों का बंध करता है, अब ये मनुष्य तीन इंच की अपेक्षा बात है, तो उसको शांतर कहना था, निरंतर क्यों कह रहे हैं? आप कह सकते हैं कोई ऐसा जीव है कि मनुष्य गति ही बांध रहा है निरंतर पहले दो गुणस्थानों में? आनत आदि शुक्ल लेशा वाले जो देव, कल हमने पढ़ा था इसको, यहाँ देखो क्या लिखा है, आनतादि देवों में निरंतर बंध को प्राप्त कर अन्यत्र शांतर बंध पाया जाता है। समझ में आई ना बात? इसलिए उसको निरंतर भी कहा, शांतर निरंतर। पहले दो गुण स्थानों में अन्यत्र ने भी जो अनंत आदि को छोड़कर बाकी सब नीचे के देव है या मनुष्य तिर्यंच है वो पहले दो गुण स्थान वाले इस अल्टरनेटली बांधते अंतर्मूर्त लौट कर फिर बांधेंगे इसको। समझ में आती है बात? अब सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में निरंतर बंध है। पहले दो गुण स्थान में सांतर भी लिया और आनत आदि की अपेक्षा निरंतर भी लिया और तीसरे चौथे गुण स्थान में निरंतर ही कहेंगे क्योंकि देव नारकी इसी का बंध करेंगे क्योंकि देवों व नारकियों के इन विवक्षित दो गुण स्थानों में अन्य गति व अनुपूर्वी के बंध का अभाव है। यानी हर समय वो मनुष्य गति ही बांध रहे हैं। इसी प्रकार औदारिक शरीर अंगोपांग और वज्र शब्द सहनन के भी कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि औदारिक शरीर का सर्व देव नारकी तथा तेजस का एक वायु का एक जो में निरंतर बंध पाया जाता है। तेजस का एक क्यों लिया यहाँ वो पता नहीं लिया। क्योंकि तेजस कायिक का यह वो तो हर समय तिर्यंच गति बांध रहा है होने दो परंतु सारे एक इंद्रिय तो औदारिक शरीर का ही तो बंद करते हैं। औदारिक अंगोपांग का लिया भी नहीं है। क्या लिया है? औदारिक शरीर का सर्व देव नारकी तथा तेजस का एक वायु का जो में निरंतर बंध पाया जाता है पर अन्यत्र यही बंध सांतर देखा जाता है। औदारिक शरीर को कैसे सांतर करेंगे? अन्य जो अन्य कायिक है वायु कायिक क्या बांधेंगे? सॉरी वायु कायिक के लिए यहाँ पर वनस्पति कायिक क्या बांधेंगे? औदारिक शरीर छोड़कर क्या बांधेंगे? वैकिरिक शरीर तो नहीं बांध सकते तो सभी एक इंद्रियों को यहाँ ले सकते थे। विकलेंद्रिय भी वैकिरिक शरीर नहीं बांधते। हाँ ये तेउ का वायु का आप में उसमें क्या लिखा है क्योंकि उनके कोई चौतिर्निर्य तक सभी जीवों के लिए ये लागू होता है क्योंकि वो वैकिरिक शरीर का बंध ही नहीं करते हैं। नहीं करते ना एक इंद्रिय करते हैं ना द्विंद्रिय करते हैं ना तीन्द्रिय करते हैं ना चतुरिंद्रिय करते हैं। हाँ असंगी कर सकता है क्योंकि वो नरक गति देवगति बांध सकता है। यानी हम वहां उसको राउंड करके एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक परंतु यहाँ बात किसकी चल रही है? गुणस्थान। हाँ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में यानी वो निकाल ही देते या फिर देव सब देव नहीं रही है लिखते तो ठीक था। लिखा है क्या? हाँ एक इंद्र से चतुर इंद्र सव देव नेरियेसु एक इंद्रिय से चतुर इंद्र तक हमारे समझने के लिए तक में एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक में ऐसा ऊपर लिखना पड़ेगा। तेउ वायु कायु के कुछ वो नीचे क्या कैसे लिखेंगे हम देखो। इसका कारण यह कि औदारिक शरीर का सर्व देव नारकी तथा एक इंद्रियादि चतुर इंद्रिय तक चाहिए, अंगों पांग को नहीं लेना है वहां से। तथा एकेंद्रियादि या एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक के जीवों में वो तिर्यंच गति का निरंतर उसमें उसको याद करते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। सारे एक इंद्रिय मनुष्य गति बांधे या तिर्यंच गति बांधे, औदारिक शरीर का तो बंद कर रहे हैं, अंगोपांग का इसलिए नहीं कर रहे। जब वो एक इंद्रिय जाति बांधते तब अंगोपांग नहीं बांधते इस अपेक्षा से। इसलिए यहाँ एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक ये शब्द होना चाहिए था। अभी आगे बढ़ेंगे। अन्यत्र यही बंध सांतर देखा जाता है। अन्यत्र ने भी असंगी पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय है, उनमें वो सांतर होगा। अब देवों में भी नीचे के देवों में जो है, हाँ क्या प्रश्न है?
आप कोई करेक्शन बता रहे हैं क्या?
करेक्शन नहीं, हम उसको राउंड करके क्वेश्चन करके हम अपनी भाषा में लिखेंगे। डाउट जो है ना, तेजस का एक वायु का एक जो लिखा है वहाँ ये लिखा था नीचे से पांचवी लाइन में, एक तीन चार पांच छठी लाइन में, फिर मैं वो छठी लाइन पढ़ती हूँ। ऊपर क्या लिखा था सातवें में, इसी प्रकार औदारिक शरीर अंगोपांग और वज्रशब्द सहनन के भी कहना चाहिए, यानी तीसरे चौथे गुणस्थान वाले उसी का बंद करेंगे। इसका कारण यह कि औदारिक शरीर का सर्वदेव नारकी तथा यहाँ तेजकायिक और वायुकायिक लियो में लिखा है निरंतर बंध पाया जाता है, पर अकेले तेजस्कायिक और वायुकायिक लिखने का कोई प्रयोजन नहीं ख्याल में आता है, इसलिए उसको राउंड करके हम नीचे लिखा है एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक के, इतना लिखा। आगे तो लिखा ये जीवों में निरंतर बंध पाए जाते हैं, अन्यत्र यही बंध सांतर देखा जाता है, यानी जो असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, बाकी मनुष्य है, देवों में भी, देवों में तो नहीं है, देव तो सर नारकी ले लिया, उसमें असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य लेना, उनमें ये सांतर बंध है। अब औदारिक शरीर अंगोपांग का, अभी नारकी सारे इसी का बंध करेंगे क्योंकि वो पंचेंद्रिय जाति बांध रहे हैं, और जो सनत कुमार वगैरह के ऊपर के जो देव है वो भी अंगोपांग तो बांध ही रहे हैं क्योंकि वो भी पंचेंद्रिय जाति का ही बंध करते हैं। एकेंद्रिय जाति का बंध करने वाले नीचे के देव हैं। हाँ, तो इसलिए कहते सनत कुमार एवं महेंद्र कल्प के देवों में भी निरंतर बंध पाकर ईशान आदि अधस्तन, यानी ईशान से लेकर नीचे गिनना, यानी ईशान, सौधर्म, फिर ज्योतिषी, व्यंतर भवनवासी आदि मिथ्या दृष्टि व सासाधन गुण स्थानों में तथा तिर्यंच और मनुष्यों में सांतर बंध पाया जाता है, क्योंकि वो एकेंद्रीय जाति का बंध करते हैं तब अंगोपांग नहीं बांधते, जब पंचेंद्रीय जाति का बंध करेंगे तब अंगोपांग बांधेंगे। वज्रशब सहनन का देव और नारकी सम्यक मिथ्या दृष्टि व असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में निरंतर बंध पाकर, क्योंकि अन्य सहननों का तो नीचे के गुणस्थानों में बंध विच्छित्ति हुई, अब देवनार की तीसरे चौथे वाले वज्रशब नारा सहनन को ही बांधेंगे, ये उसका अर्थ होता है। अन्यत्र सांतर बंध पा जाता है, अंतर अन्यत्र ने मिथ्या दृष्टि और सासाधन वाले को, यानी मिथ्या दृष्टि और सासाधन वाले चारों गति के जीव लेना, तो वो नीचे के सहनन यानी उसका वो प्रतिपक्ष भी है वहां पर, तो उसमें सांतर होगा। ये समझ में आती बात? देखो सहनन में, हाँ सहनन तो जो मनुष्य तिर्यंच देव और नार के सभी बांधेंगे, कब बांधेंगे? मनुष्य गति और तिर्यंच गति के साथ। जब मनुष्य तीन इंच देवगति नरगति बांध रहे तो वैकृत शरीर बांधते, उसके साथ सहनन नहीं बनता, समझ में आई ना। यह औदारिक शरीर अंगोपांग और वज्रषभ नाराज सहनन की बात है। तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले मनुष्य और तीर्यंच सहनन को नहीं बांधेंगे क्योंकि वो देवगति बांध रहे। तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले देव और नारकी इसको बांधेंगे क्योंकि वो औदारिक शरीर अंगोपांग और वज्रषभ नाराज सहनन का ही बंध करते हैं। तीसरे तो मरता ही नहीं है, चौथे वाला पांचवे का कर्म भूमि में तो आते हैं, अभी पांचवे में नहीं आएंगे, पांचवे काल में नहीं जन्मेंगे। सम्यक तो सही जन्मना है ना, उसकी बात, वहां क्या बांध रहे उसकी बात चल रही है। आने की बात तो बाद में ही सोचेंगे, जब तक वो सम्यक में है तब तक वज्रषभ नाराज सहनन ही बांध रहे, ये कहना चाहते हैं। ख्याल में यही बात। तो सम्यक्त के साथ उत्पन्न होने वाले को कौन सा सहनन होगा? सम्यक्त के साथ मनुष्य में जन्मने वालों का सहनन कौन सा होगा? पर ऐसे तो सहनन सातवें तक जो तो जन्म से जो सहनन वो जन्म से मिथ्या दृष्टि समझना क्या? यानी मेरा प्रश्न ही मैं पूछ रही हूँ, प्रश्न क्या है? ये नीचे के जो सहनन है या जो अन्य भी जो दोष, हाँ ऐसा लगता है नहीं, वो कहते मिथ्या दृष्टि सही जन्मने वाले उनके नीचे सहनन हो गए। तीन में होगा तो उक्षम श्रेणी में जाएंगे जाने वाले, वज्रषभ वाले की बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि के भी तो होता ही है ना, परंतु सम्यक दृष्टि के कौन सा सहनन हो? ऐसा उदय का नियम नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है, भले बंधा है परंतु, यानी ये विचार अभी आया मेरे को। उदय की बात यहाँ नहीं है ना, बंध की है। ठीक है, एक प्रश्न मुझे स्ट्राइक हुआ क्योंकि वहां सम्यक के साथ आए तो अंतिम समय तक वज्रषभ नाराज सहनन का ही बंध कर रहा था, मन तो उदय किस रूप होगा? जैसे ये हमने नियम बताया कि श्रीवेद के सहित उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे सहनन के साथ उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा कहीं नियम पढ़ने में नहीं आया है। भूभूमि की तो बात है, वो तो मिथ्या दृष्टि भी वज्रषभ नाराज सहन, वो तो स्त्रियां भी वज्रषभ नाराज सहनन वाली होती है भोगभूमि की, उसकी बात नहीं यहाँ पर। उदय विच्छेद कहाँ हुई है? ये ऐसा थोड़ा प्रश्न मुझे कि अंतिम समय तक तो वज्रषभ नाराज बांध रहा है तो यहाँ जन्मते समय कौन सा हो सकता है, ये प्रश्न मुझे स्ट्राइक हुआ। जो होगा वो होगा, नहीं नहीं हम नहीं कह सकते। हाँ आगे देखते चलो। उदय विच्छेद तो हम देखे ना, तीन सहनन की सातवें में है, दो सहनन की ग्यारहवें में है, यानी जन्मते समय कौन सा है उसकी बात, सम्यक के सही जन्मने वाले को कौन सा होगा, ऐसे कहीं नहीं है। वही सहनन होता है, सहनन नहीं बदलता। हाँ वेद भी नहीं बदलता। आगे देखते देखो, संस्थान भी नहीं बदलेगा नहीं द्रव्य लेशा बदलेगी। हाँ अभी आगे देखते, ये 47 की बात हमने पढ़ी थी, जरा रिपीट हो गई है, 48 पृष्ठ पर आते हैं अभी हम। हाँ नहीं ये अभी मुझे स्ट्राइक हुआ। हाँ नहीं मैंने बोला था कल, मैंने बोला था कि तेजस का एक वायु का एक को कैसे लिया करके, नहीं एकेंद्रीय सभी एकेंद्रीय, ये भी बोला था कि सभी एकेंद्रीय उसका बंद कर रहे हैं, इसको अलग से क्यों लिया, ये भी लिया था मैंने। हाँ अच्छा किया आपने पूछा, तो और थोड़ा फिर ख्याल में आ जाएगा। हाँ बराबर है। अभी 48 पृष्ठ पर आते हैं। अब कौन से प्रत्यय उनसे बांधते हैं उसकी चर्चा चलेगी। अप्रत्यय खानावरण चतुष्को को चार गुणस्थानों के जीव ज्ञानावरण प्रत्ययों से ही बांधते हैं। जैसे ज्ञानावरण के कारण हमने देखे, क्योंकि ये चौथे गुणस्थान तक तो अप्रत्याख्यान तो बंध ही रहे हर समय, तो पहले गुणस्थानों के प्रत्यय हमने देखे थे चार मूल प्रत्यय हैं, और नाना समयों या नाना जून की अपेक्षा उत्तर प्रत्यय कहेंगे कितने थे, 57 में से 55 थे। दूसरे गुणस्थान में मूल 3 और ये 50। तीसरे गुणस्थान में 43, चौथे में 46। और एक समय में बात करनी है तो पहले गुणस्थान में 10 से लेकर 18 तक, दूसरे में 10 से लेकर 17 तक, तीसरे में 9 से लेकर 16 तक, तीसरा चौथा से। अब यहाँ आगे बढ़ते देखो, इसी प्रकार मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी के भी प्रत्ययों की चारों गुणस्थानों में प्ररूपणा करनी चाहिए। विशेषता यह है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि के 42 प्रत्यय कहना चाहिए, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि जब कहते तीसरा गुणस्थान तो चारों गतियों की अपेक्षा ये गिनाए हैं, परंतु वहां मनुष्य और तिर्यंचों को ये नहीं बनता है। मनुष्य और तिर्यंच तीसरे चौथे गुणस्थान वाले इसको नहीं बांध रहे, किसको, मनुष्य गति को। इसलिए कहते हैं कि वहां 42 प्रत्यय कहना चाहिए। हाँ, उसे औदारिक का युग प्रत्यय का अभाव है, बस ये बात है। हमने टोटल तीसरे गुणस्थान में कितने 43 गिने थे, टोटल जो गिने थे, तो वहां तो मनुष्य तिर्यंचों को उसमें नहीं लेना है, तीसरे चौथे वालों को, तो वहां औदारिक का योग को नहीं लेना उसमें से। तीसरे की बात है, वहां तो औदारिक मिश्र होता ही नहीं है, इसलिए यहां औदारिक का योग नहीं लिया। असंयत समय दृष्टि के उनके 46 थे टोटल, 44 प्रत्यय कहना चाहिए, क्योंकि उसके औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग प्रत्ययों का अभाव, ये कहने समझ में आई बात। तीसरे में अकेला औदारिक का योग माइनस किया, क्योंकि जिसमें से गिने उसमें से माइनस गिनेंगे, वहां तो मिश्र का योग को गिना ही नहीं था हमने, औदारिक मिश्र वैकरिक मिश्र कारमान को गिना ही नहीं था। यहाँ वो योग तो होते हैं, परंतु कारमान का योग तो देवनारकी को भी होता है, वो तो मनुष्य गति को बांधेंगे उसके साथ, परंतु इसके साथ वैकरिक मिश्र वाले तो मनुष्य गति बांध ही रहे, परंतु यहाँ औदारिक मिश्र वाला नहीं बांधेगा। चौथे गुणस्थान के साथ जो मनुष्य में जन्मा है या तिर्यंश में जो भूमि में जाके जन्मता है, वो अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र अवस्था में देवगति का ही बंद करेगा, मनुष्य गति को नहीं बांधेगा, ये उसका अर्थ है, समझ में। इसलिए औदारिक मिश्र वालों को नहीं लिया यहाँ पर, और औदारिक का योग को उसको भी छोड़ दिया। इसी प्रकार औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ नाराज सहनन के भी प्रत्ययों की प्ररूपणा मनुष्य गति नाम कर्म के समान करना चाहिए। क्यों बांधेंगे, काय योग नहीं, उनके औदारिक काय योग, देखो आप घोटाला, काय योग बांधे नहीं जाते, काय योग तो प्रत्यय में लेना है। मनुष्य में आने वाला वैकरिक शरीर बांध रहा है, उसका योग मनुष्य में आया तो उसके औदारिक मिश्र का योग है, बांध रहा है देवगति, वो औदारिक शरीर देह मनुष्य गति आदि नहीं बांध रहा है, इसलिए वहां वो औदारिक मिश्र वाला प्रत्यय का अभाव है। चौथे गुणस्थान वाला जो देवनारकी में जन्म ले रहा है वैकरिक मिश्र के साथ, वो प्रत्यय में गिनेंगे, योगों को प्रत्यय में लिया ना, तो वहां वो मनुष्य गति आदि इन प्रकृतियों का बंध कर रहा है। वही तो लेते हैं, तो देवनारकियों के जो योग हो गए वो गिनेंगे, मनुष्यों को जो तीसरे चौथे गुण स्थान वाले जो योग है, कौन कौन से योग है? हाँ, उसी की बात चल, वैकरी की बात नहीं चल रही है। कौन सी गति? क्योंकि हमने चौथे गुण स्थान की जो बंध विच्छित्ति है, ठीक, हाँ देखो इसी प्रकार ये हो गया ना, पहला पैराग्राफ हो गया। समझ में आए? कोई प्रश्न है मनीषा बहन? फिर से प्रत्यय ने उसके कारण क्या क्या है, अभी ये बात छोड़ो, कौन सी प्रकृतियां बन रही? तीसरे गुणस्थान में प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? तो हमने देखे थे तीसरे गुणस्थान में 43 प्रत्यय होते हैं, वह मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है। तो अभी हमको असंयम में पहले गिनना है। तो असंयम कितने प्रकार का है? तो टोटल है सारा 12 के 12 है, क्योंकि हमको टोटल इन जनरल सब देखना है। तो 12 असंयम हो गए। अब कषाय कौन कौन से है? अप्रत्याख्यान है, यानी 12 कषाय है, और 9 कषाय है, 21 है। वो 21 और ये 12 कितने हुए? 33 हो गए, 33 हो गए। अब अभी योग को गिनना है, तीसरे गुणस्थान में योग को गिनो, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक और वैकरिक, ये मिश्र को नहीं लेना है। तो 10 कितने हुए? 43 हो गए ना। तो यहाँ औदारिक मिश्र औदारिक का योग कहाँ गिना हमने? क्योंकि मनुष्य गति बांधने वाले कौन है, वहाँ औदारिक का योग हमने तीसरे गुणस्थान में जनरल में गिना। पर अभी तीसरे गुणस्थान वाले मनुष्य गति कौन बांधते हैं? देव और नार की, उनमें औदारिक का योग को छोड़कर बाकी 9 योग हो गए, मन के 4, वचन के 4 और वैकरिक का योग। चौथे की नहीं, मैं तीसरे की बात कर रही। तो तीसरे में कितने लिए उन्होंने? 42। अभी चौथे की बात करते हैं, चौथे गुणस्थान वालों के योग कितने हैं? मन के 4, वचन के 4, वैकरिक वैकरिक मिश्र और औदारिक औदारिक मिश्र, सब है ना, उसको तो छोड़ना ही है ना, कार्माणिक लेना है, यानी 13 लिए। तो 13 में से अभी मनुष्य वाले इसमें से छोड़ देना है, औदारिक नहीं लेना, औदारिक मिश्र नहीं लेना, बाकी सब ले लो, वैकरिक वैकरिक मिश्र कारमाण मनोयोग वचन योग सब ले लो। तो 11 हो गए, तो बाकी जो हमने गिने थे उसमें ये 11 ले लेना। हाँ, 33 और 11, 44। ख्याल में यही बात है, मनुष्यों के जो पॉसिबल है वो यहाँ छोड़ देना था, उस गुणस्थान में जो पॉसिबल है वो। अब नीचे का पैराग्राफ सेकंड, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क को अभी कौन से गति युत बांधता है? मिथ्या दृष्टि 4 गतियों से संयुक्त बांधता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि 4 गतियां बांधता है, और वो मिथ्या दृष्टि अप्रत्याख्यान को तो ही बांध ही रहा है ना, वो तो सारे 16 कषायों को बांध रहा है। सासाधन सम्यक दृष्टि नरक गति के बिना 3 गतियों से संयुक्त, क्योंकि सासाधन वाले को 3 गतियां बनती है, या इन जनरल बात चल रही। देव और नार की कौन से, वो मार्गणा में देखेंगे हम। और शेष दोनों गुणस्थानवर्ती जीव देव और मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं, इसका अर्थ है मनुष्य वो देव गति से संयुक्त बांधता है और देव नार के वो मनुष्य गति से संयुक्त बांधता है। किस गति सहित ये बांध रहे उसकी चर्चा है। मनुष्य गति और मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी को ये अप्रत्याख्यान की बात हो गई। मनुष्य गति और मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी को सर्व गुणस्थानों के जीव मनुष्य गति के संयुक्त बांधते, क्या कहना चाहते हैं? कौन बांध रहा है उसकी चर्चा नहीं करना, स्वामी नहीं है। मनुष्य गति किस गति के साथ बांधते? मनुष्य गति के साथ। मनुष्य गत्यानुपूर्वी कौन से गति के साथ बनते? मनुष्य गति के साथ, उसमें तो कोई दो राय नहीं। औदारिक शरीर और औदारिक अंगों पांखों, अकेले एक एक प्रकृति अलग अलग रहे। मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि तिर्यक गति एवं मनुष्य गति संयुक्त बांधते हैं। ख्याल में आई ना बात? बांधने वाले कौन है? देवनार की, उसकी चर्चा नहीं है। कौन सा गति बांध रहे उस समय वो? तो पहले दो गुण स्थानों में दोनों गतियां बंध रहे, तिर्यंज गति और मनुष्य गति, और तीसरे चौथे वाले कहेंगे मनुष्य गति के साथ ही बांध रहे। और सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंय सम्य दृष्टि मनुष्य गति से संयुक्त बांधते। बांधने वाले कौन है? देवनार की, वो मनुष्य गति सहित इन प्रकृतियों का बंध कर रहे। इसी प्रकार वज्रषभ वज्र नाराज सहनन का भी गति संयोग कहना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रकृतियों से इसके कोई भेद नहीं है। क्योंकि सहनन जो होता है तो सहनन तो मात्र तिर्यंच और मनुष्यों के ही होता है। जब तिर्यंच गति और मनुष्य गति बन रहे तब ये सहनन बन सकता है। पहले दो गुण स्थान वाले मनुष्य गति और तिर्यंच गति सहित बांध रहे, तीसरे चौथे वाले मनुष्य गति सहित बांध रहे, ये उसका अर्थ होता है। अब उसके स्वामी कौन है, बांधने वाले कौन से जीव के गति के जीव है वो अब बताएंगे। पहले किस गति सहित इसका बंध है उसी की चर्चा चली, अब बांधने वाले जीव कौन से गति के है उसकी चर्चा चलेगी। देखो, अप्रत्याखानावरण चतुष्क के बंध के चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि स्वामी है, क्योंकि वो कैसी है? ध्रुवबंधी है। तो चारों गति के चारों गुणस्थान वाले इसका हर समय अनादि से तो बंद कर रही रहे। मनुष्य गति मनुष्य गति प्राज्ञानुपूर्वी औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ नाराज सहनन प्रकृतियों के चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि व सासाधन समय दृष्टि स्वामी है। यानी पहले दो गुणस्थान वाले इन प्रकृतियों का बंद करते हैं तो चारों गति वाले इसको करेंगे। ये ख्याल में आई बात? अब तीसरे चौथे की बात करेंगे। दो गतियों के यानी देव और नार की, क्या कहा? बंद करने वाले स्वामी कौन है? दो गतियों के समय मिथ्या दृष्टि और असंय समय दृष्टि स्वामी है, मनुष्य नहीं है। देव गति वाले लेना, देव और नार के। मनीषा भाई क्या लिखा है उसमें? सासाधन के बाद हाँ, ये कौन से दो गतियों वाले हो गए? हाँ, देव और नार के। देव और नार के बांधने वाले कौन से गति के है? तो देव और नार के। यहाँ तो दो गतियों के कहकर छोड़ दिया, हमें ये समझना है वो देव नार के की बात है। बंध अध्वान यानी कहाँ से कहाँ तक बनती है उसको बंध अध्वान कहेंगे। कहाँ से कहाँ तक बनती है? मिथ्या दृष्टि साधन और मिथ्या दृष्टि के लिए चारों गति का, वो चारों गति के जीव उसका बंध रहे। बांधने वाले जीव चारों गति वाले हैं, परंतु तीसरे चौथे वाले बांधने वाले जीव कौन है? देवनार की ही है, इसलिए वो दो गति के कहे। अब बंध अध्वाने ने कहां से कहां तक बनती है और बंध नष्ट प्रदेश अर्थात जिस स्थान तक बंध होता है तथा जहां बंध की विच्छित्ति होती है वह जानना भी सुगम है, क्योंकि वो सूत्र में ही बता दिया है ये पहले चार पहले से चौथे तक बनती है, ये उसका बंध अध्वान है। और कहाँ? तो चौथे के अंतिम समय तक बनती है, वहां बंध विच्छेद होता है, ये उसका नष्ट प्रदेश है। अब उसमें वो सादि अनादि ध्रुव अध्रुव की बात दे देंगे। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का बंध मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों प्रकार का है, क्योंकि अनादि तो बनती ही है ये तो नक्की है, परंतु जो ऊपर के गुणस्थानों में पांचवे आदि ऊपर के गुणस्थानों में जाकर नीचे आए हैं तो अप्रत्याख्यान कैसा उसका होगा? सादी हो जाएगा। और अभव्य के लिए ध्रुव है और भव्य के लिए अध्रुव है, तो इसलिए कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का बंध मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का है। चारों प्रकार का अर्थ क्या है? सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव। ये बहुत बार बता चुके ना, इसलिए उसने लिखा नहीं पूरा है? क्योंकि ये चारों प्रकृतियां ध्रुव बंदी है, वो प्र रह गया। इसका अर्थ समझ में आया? सबको एक साथ नहीं लिया है, मनुष्य गति को नहीं लिया उन्होंने, किसमें? चारों प्रकार में, क्योंकि मनुष्य गति तो प्रतिपक्षी प्रकृति है, अवदारिक शरीर अंगोपांग प्रतिपक्षी है, सहनन प्रतिपक्षी है, तो उसको अनादि नहीं कह सकते हम, उसको सादी और अध्रुव में डालेंगे। अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे। देखो तो कहते हैं मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में तो चारों प्रकार का है, क्योंकि ये चारों प्रकृतियां ध्रुवबंदी है। शेष गुणस्थानों में इनका बंध तीन प्रकार का है, क्योंकि जब दूसरे गुणस्थान, उसका अर्थ क्या है, कभी कभी न कभी सम्यक तो प्राप्त करके ये गिर कर दूसरे में आए हैं। जब सम्यक तो प्राप्त किया था, साधी हो गया, तो वो मनुष्य गति बांध रहे थे, पर जब सासाधन में आ गए तो कभी तिरंज गति कभी मनुष्य गति बांधना चालू करते हैं। ये अप्रत्याख्यान की पहली बात करें, मैंने मनुष्य गति को बीच में लाया, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले अप्रत्याख्यान आवरण की बात करेंगे। जब सम्यक दृष्टि हुए चौथे गुणस्थान में या पांचवे में गए तो अप्रत्याख्यान का बंध नहीं था, अब नीचे आए तो अप्रत्याख्यान का बंध शुरू हुआ, इसलिए वहां वो सादी कहलाएगा और अध्रुव तो है ही। अब मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र शब्द, वज्र नारा, सहनन, मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का बंध सब गुणस्थानों में सादी व अध्रुव है, क्योंकि नीचे के गुणस्थानों में वो तो प्रतिपक्ष सहित है। आप कहेंगे तीसरे चौथे वाले को तो निरंतर बन रही, वहां कहां प्रतिपक्ष है, पर जब चौथे में आए तो उसके पहले वो सादी था कि नहीं, सादी करके आया था, इसलिए उसको भी सादी और अध्रुव ही कहेंगे, और बाद में भी उसके बंधे विच्छित्ति होने ही वाली है, तो इस अध्रुव तो हो ही जाता है, क्योंकि इनके प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध संभव है। शंकाकार पूछते हैं, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर के बंध से रहित नित्य निगोदिया जीवों में औदारिक शरीर का ध्रुव बंध और निरंतर बंध सदा क्यों नहीं कहा? ख्याल में प्रश्न, नित्य निगोद ने जो अभी तक निगोद पर्याय से बाहर ही नहीं लिख ले, निगोदिया कहो वो गो करना, उसको निजो दिया हुआ है, निगोदिया करना। तो वहां ध्रुव बंध क्यों नहीं कहते, और उसके प्रतिपक्ष का भी बंध कभी हुआ ही नहीं है, समझ में आई बात, उसको क्यों नहीं कह रहे ध्रुव बंदी और निरंतर बंदी? समाधान, सदा नहीं कहा क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृतियों की बंध शक्ति के सद्भाव की अपेक्षा करके, बंध शक्ति तो है ना, प्रतिपक्ष प्रकृतियां है, अनादि और ध्रुव बंध का प्ररूपण नहीं किया, अथवा चतुर्गति निगोदों को छोड़कर नित्य निगोदों का यहाँ अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ नित्य निगोदों की बात नहीं है, परंतु बंध की अभिव्यक्ति की अपेक्षा करके, बंध की अभिव्यक्ति ने ये कभी बंधी थी इस तरह से, उसकी अभिव्यक्ति ने वो नित्य निगोद को छोड़कर बाकी जो अन्य प्रकृतियां बनती रहती है प्रतिपक्षी, उसकी अपेक्षा करके इनके बंध के अनादि और ध्रुव होने में कोई विरोध नहीं है। यानी अगर वो नित्य निगोद की अपेक्षा बात करना है तो अनादि हम ध्रुव बंदी किसको? औदारिक शरीर को, अंगोपंग को नहीं, अकेले औदारिक शरीर को। तो मोहनीय में से हमने मिथ्यात्व देखा, अनंतानुबंधी तो देखा ही था स्थान वृद्धि के साथ, और प्रत्याख्यान अभी देखे उसके साथ वाली, अब प्रत्याख्यान आवरण की बात करेंगे। वो बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? पांचवे में। पांचवे में उसके साथ और कौन कौन सी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है? चार ही होती है और कोई नहीं होती उसके साथ। वो उदय में तो तीरंज गति वगैरह वगैरह लिया था हमने, यहाँ तो बंध की बात चल रही। देखो पढ़ेंगे 19 नंबर का सूत्र, पच्चाखा वर्णीय कोध मान माया लोभानम को बंधो को अबंधो, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया और लोभ का कौन बंधक है और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। कहते मिच्छा इच्छी पहुड़ी जाव संजदा संजदा बंधा, ये फुल स्टॉप देना है, दंड एदे बंधा अवशेषा बंधा। अभी ये तो आसान है ना, क्योंकि वो तो एक साथ निचार ही है। हाँ बंद, उसके बाद फुल स्टॉप यानी वो दंड हिंदी में खड़ी लाइन, संस्कृत और हिंदी में इस तरह। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक बंधक है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप दंड देना। ये बंधक है, अवशेष अबंधक है, यह देशामर्शक सूत्र है। अभी इसमें सारे ही प्रश्न उपस्थित होते हैं, क्योंकि यह बंध स्वामित्व और बंध अध्वान का ही निरूपण करता है, यानी कहां से कहां तक ये बता दिया उसने। इस कारण यहां अनुक्त अर्थों की प्ररूपना कहते हैं। अनुक्त का अर्थ क्या है मनीषा बेन? अनुक्त, उक्त यानी बताया हुआ, अनुक्त यानी नहीं बताया हुआ, वह इस प्रकार है। इन चारों प्रकृतियों का बंदर उदय दोनों एक साथ विच्छिन्न होते हैं। हमने ये पूछते हैं ना, पहले बंध जाता है कि पहले उदय जाता है कि दोनों एक साथ होते हैं? क्योंकि संहिता संयत गुणस्थान में बंध के समान इनके उदय का भी विच्छेद देखा जाता है। इन चारों ही प्रकृतियों का बंध स्वोदय और परोदय से होता है। स्वोदय परोदय ने एक एक को लेना, क्रोध के उदय में भी क्रोध बन रहा है और मान माया लोभ के उदय में भी क्रोध बनता है, ऐसे एक एक पर घटित करो। क्योंकि क्रोधादिकों के बंध काल में उसका ही उदय भी होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी लोभ के उदय में भी क्रोध बन रहा है इसलिए वो परोदय में भी बनता है, ये उसका कहना है। इन चारों का ही निरंतर बंध होता है, क्योंकि ये चारों प्रकृतियां 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियों में गर्भित है। 47 याद है कि भूल गए मनीषा बेन? देखो पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, पांच अंतराय, वो 19 हुए। अब मोनी की भी 19, मिथ्यात्व 16 कषाय और भय जुगुप्सा है? और बाकी नाम कर्म की है, कौन सी है? तेजस कारमान, हाँ, फिर वर्णादिचार, अगुरु लघु, उपघात और निर्माण, ये हो गए ना। तो उसमें हमने देखे थे 16 कषाय लिए ना, तो ये सारे ध्रुवबंधी है। अभी प्रत्यय जो हमने हर गुणस्थान के देखे थे, देखो नीचे का पैराग्राफ। मिथ्या दृष्टि आदि पांच गुणस्थानों में जो मूल व उत्तर प्रत्यय कहे गए हैं, उन प्रत्ययों से ये प्रकृतियां बनती है। अतएव उन गुणस्थानों में उन्हीं उन्हीं प्रत्ययों को कहना चाहिए, क्योंकि बंध प्रत्यय समूह का कार्य है। प्रत्यय समूह का कार्य है, वहां के जो सारे जो प्रत्यय है उनके कारण ये बंध हो रहे हैं। हमने मिथ्या दृष्टि के गिने थे, मूल प्रत्यय 4 और उत्तर प्रत्यय नहीं, मिथ्या तो के नहीं, मिथ्या तो गुणस्थान में 55 अभी हमने गिने थे ना सबके, और बाकी एक समय की अपेक्षा 10 से लेकर 18, दूसरे गुणस्थान में 50 मूल प्रत्यय 3 और यहाँ एक जीव की अपेक्षा 10 से लेकर 17 तक, तीसरे गुणस्थान में 43 और 9 से 16, चौथे गुणस्थान में 46 वो भी 9 से 16, फिर पांचवें गुणस्थान में 37, हाँ, और वहां कितने लिए थे? 8 और 14 बराबर। तो ये सब ऐसे होने चाहिए यहाँ पर। अथवा इन प्रकृतियों के बंध का प्रत्यय प्रत्याख्यान प्रकृति का उदय सामान्य है, क्योंकि इसके उदय में इसका बंध होता है, इसलिए केवल ऐसा कहना है कि प्रत्याख्यानावरण का उदय में ये हो रही है। शेष कषायों का उदय और योग प्रत्यय नहीं है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान के ऊपर उनके रहने पर भी इनका बंध नहीं होता। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कषाय का उदय पांचवे तक है, पांचवे के ऊपर नहीं है। अन्य कषाय कौन से? संज्वलन, पांचवे के ऊपर है, परंतु उसके कारण इनका बंध नहीं हो रहा है। इसलिए इनका बंध के प्रत्यय में प्रत्यक्ष अनावरण का उदय को लिया, अन्य के उदय को नहीं लिया। नीचे के गुणस्थान तो अप्रत्यक्ष अनंतानुबंधी भी है, पर पांचवे में मात्र प्रत्यक्ष अनावरण है, उसके उदय में ये बंध रहे, इसलिए उसके अकेले अथवा करके उसका एक रीजनिंग ये भी बताए। पहले गुणस्थान में तो सारों का ही उदय है, अनंतानुबंधी का भी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सबका है, और वहां पहले में पहले उन सभी प्रत्ययों को स्वीकार किया गया, परंतु अथवा कहकर स्पेसिफिकली जो बताना है कि पांचवे गुणस्थान के ऊपर अन्य तो कषाय है ना, संज्वलन भी है और नौ नौ कषाय भी है, उनका उदय होने पर प्रत्याख्यानावरण नहीं बन रहा, इसलिए कहते वो इसका कारण नहीं हो सकता। ये अथवा कहकर हाँ, या अकेले प्रत्याख्यानावरण को रखा, क्योंकि नीचे के अनुष्ठान में प्रत्याख्यानावरण भी है, नीचे अन्य भी है, तो बंध ये प्रत्याख्यान का उसके कारण हो रहा है, ये एक अलग मत प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके ने संज्वलन और नवकषाय, उनके का अर्थ क्या है? संज्वलन और नवकषाय प्लस नव नवकषाय। अब बाकी की बात करेंगे, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि वो बात बताएंगे। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण प्रकृतियों का उदय भी इन प्रकृतियों के बंध का प्रत्यय नहीं है, क्योंकि उनके उदय के बिना भी इनका बंध पाया जाता है। ये कहाँ हो जाता है? उनके उदय के बिना इनका बंध कहाँ पर पाया जाता है? पांचवे में। हाँ, देखो, जिनका उदय नहीं होने पर भी इनका बंध पाया जाता है, और जिनका उदय होने पर भी इनका बंध नहीं पाया जाता, इसलिए दोनों को रूल आउट कर दिया। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान को भी निकाल दिया, और बाकी जो है बाद में उदय में आने वाले उनको भी निकाल दिया। कौन बच गया? प्रत्याख्यानावरण। इसलिए प्रत्याख्यानावरण के उदय यही इसका इसके बंध का कारण है, ये उन्होंने नक्की किया। जिसके अन्वय और व्यतिरेक के साथ, जिसका अन्वय और व्यतिरेक होता है वह उसका कार्य और दूसरा कारण होता है, जिसको कहते दोनों ओर से व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति जिसको कहेंगे, यानी जिसके होने पर जिसका बंध होता है, जिसके नहीं होने पर जिसका बंध नहीं होता, ये अन्वय और व्यतिरेक की अपेक्षा कह दिया। अन्वय ने जिसके होने पर जिसका अन्वय होता है, जिसको जिसका बंध होता है, और जिसके नहीं होने पर जिसका बंध नहीं होता, और यह बात प्रत्याख्यानावरण के उदय को छोड़कर अन्यत्र है नहीं। इसलिए प्रत्याख्यानावरण का उदय ही अपने बंध का प्रत्यय है, यह बात सिद्ध हुई। समझ में आई बात? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में विच्छिन्न हुई 16 प्रकृतियों के बंध का प्रत्यय मिथ्यात्व का उदय ही है, क्योंकि उसके बिना उन 16 प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता। सासादन गुणस्थान में विच्छिन्न हुई 25 प्रकृतियों के बंध का अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय ही प्रत्यय है, क्योंकि 25 प्रकृतियों में हमें पहले और दूसरे गुणस्थानों के प्रत्यय को गिना था, परंतु यहाँ कहते कि वो पहले गुणस्थान के प्रत्यय नहीं होने पर भी ये दूसरे में बनती है, इसलिए अकेले दूसरे गुणस्थान के प्रत्यय इसके कारण है, ये इसमें ले लिया, क्योंकि उसके बिना इन 25 प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता। असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में विच्छिन्न हुई 9 प्रकृतियों के बंध का अप्रत्याख्यानावरण का उदय कारण है, क्योंकि उसके बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। नीचे के गुणस्थानों में इनका बंध है, क्योंकि वहां पर भी अप्रत्याख्यानावरण है, और ऊपर के गुणस्थानों में अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है, तो वो बनती भी नहीं, इसलिए इसको ले लिया। प्रमत्त संयत गुणस्थान में विच्छिन्न हुई 6 प्रकृतियों के बंध का प्रत्यय प्रमाद है, क्योंकि वहां का जो है वही वो उसका प्रत्यय कह दिया। वो कौन सी विचित्त होती है याद है? हाँ, अस्थिर, अशुभ, हाँ, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक। उसके लिए प्रमाद ही उसका कारण बताया, क्योंकि उसके बिना उनका बंध नहीं पाया जाता। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानकर कहना चाहिए, यानी उस गुणस्थान का जो प्रत्यय उसी को यहाँ लिया है, और एक अपेक्षा उसके सारे गुणस्थानों में उसके बातें घटित करती है। पहली जो अपेक्षा अभी तक देखते आए हैं और अभी जो देख रहे हैं उसमें क्या है, उस गुणस्थान वाला जो प्रत्यय है वही उसका कारण बताया। अब कौन से गतियों सहित बन रही है वो बात चल रही है। इन प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि चारों गतियों से संयुक्त, जिस गुणस्थान में जो गतियां बनती उसको लेना है। सासाधन समय दृष्टि नरक गति के बिना तीन गतियों से संयुक्त, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि देव गति एवं मनुष्य गति से संयुक्त, तथा संहिता संयत देव गति से संयुक्त बांधते हैं। हाँ, अभी बांधने वाले कौन है? तो चारों गतियों के, अभी चारों गतियों में कौन कौन से गुणस्थान है, तो पहले चार गुणस्थान तो चारों गतियों में है, इसलिए कहते चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि सासाधन समय दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीव इन प्रकृतियों के बंध के स्वामी है। क्योंकि तो ध्रुवबंदी है ना, तो सभी तो चौथे गुणस्थान तक तो बनती है। अब पांचवें गुणस्थान कौन से जीवों के होता है? मनुष्य तीर्यंचों को। दो गतियों को प्राप्त हुए संयता संयत जीव स्वामी है। पेज 52, यानी बांधने वाले जीव पहले चार गुणस्थान वाले तो चारों गतियों में होते हैं, वो उसके स्वामी है। पांचवें गुणस्थान तो तीन इंच मनुष्यों के होता है, वो उसके स्वामी है। पांचवें तक बताना है हमको। बंध अध्वान ये तो बता दिया सूत्र में, और बंध विनष्ट स्थान सुगम है, वो स्थान शब्द दोबारा हुआ है, वो नहीं चाहिए वहां पर। पेज नंबर 52, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, नीचे से तीसरी लाइन पहले पैराग्राफ की, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में इनका सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव के भेद से चारों प्रकार का बंध है। ये तो ध्रुवबंदी होने से अनादि तो समझते हैं, परंतु सादि कब होगा मनीष अभिन आपको सोचना है। ये किसकी बात चल रही है? प्रत्याख्यानावरण की चल रही है। हाँ, उसका सादि बंध कब होगा? पांचवें में भी बंद है, उपशम शरीर की भी जरूरत नहीं, मुनि हुए तो इसका बंध नहीं है। हाँ, और मुनि हुए तब तक बंध नहीं था, और फिर नीचे के गुणस्थान में पहले में गया तो वहां बंध चालू हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? सादी, ख्याल में है ना, और अध्रुव भी कहेंगे उसको, अभव्य जीवों को ध्रुव कहेंगे। हाँ, शादी है तो अध्रुव है ही। हाँ, और अभव्य में ध्रुव देना, और वो कौन से ध्रुव होते हैं? प्रतिपक्ष वाली ध्रुव कभी नहीं होगी, प्रतिपक्ष वाली है तो शादी और अध्रुव ही होती है, भले मिथ्या दृष्टि हो समय दृष्टि हो कोई भी हो। और सासाधन गुणस्थान के ऊपर जो है वो सारे कैसे जीव है? भव्य है, तो उनमें ध्रुवबंदी प्रकृतियां भी अध्रुव कहेंगे भव्य जीवों, क्योंकि उन्होंने वो भव्य की अभिव्यक्ति हो गई। मिथ्या दृष्टि में भी भव्य जीव है, परंतु हमको वो तो सोचना पड़ता है ध्रुव भी और अध्रुव भी, पर सासाधन से ऊपर सारे एक बार सम्यक तो प्राप्त तो हुए ही है, तो उनके लिए सारी प्रकृतियों का बंध कैसा है? तो अध्रुव है, क्योंकि सभी बंध खलास करके वो मोक्ष जाने वाले। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कहते मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में इनका सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव के भेद से चारों प्रकार का बंध है, क्योंकि ये 47 ध्रुव प्रकृतियों में आती है। अभी हमने गिनी थी ना 47। उपरिम गुणस्थानों में तीन प्रकार का बंध है, तीन का दो, क्योंकि वहां दो प्रकार के बंध का अभाव है। टीवी हो क्यों कहा? टीवी हो लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो अप्रत्यक्ष अनावरण के लिए निकालो, प्राकृत में गलती हो गई है। अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय की बात है ना, उसको निकालो। टीवी हो यहाँ पर भी लिखा है, उसका भाषांतर क्या कहा? अच्छा अच्छा, ध्रुव छोड़कर तीन प्रकार का, बराबर है। हाँ हाँ, ध्रुव छोड़कर तीन प्रकार का, शादी अनादि ऐसा लिया है, क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में गया नहीं है, उसके लिए अनादि है, बराबर है। क्योंकि शादी अनादि और अध्रुव, देखो देखो, उपरिम गुणस्थानों में है, तीन प्रकार का बंध है, क्योंकि वहां दो प्रकार के बंध का अभाव है। हाँ देखो देखो, फिर से वैसे ही, हाँ ध्रुव बंध का अभाव है। हाँ देखो, अप्रत्यक्ष अनावरण में जैसा लिखा है ना, वैसा ही यहाँ लिखते हैं। देखो देखो, दो नहीं है, ध्रुव चाहिए। पेज नंबर 49 निकालो, नीचे चौथी लाइन, वहां से पढ़ेंगे नया पैराग्राफ 49 प्राकृत में। अपचखान चौक बंधो मिच्छा इठिमी चौवी हो, ध्रुव बंधित तादो, ध्रुव बंदी होने से शेषेशु गुणस्थाने गुणठानेशु तिवी हो ध्रुवत्ता भावादो, ध्रुवत्व के अभाव से। वैसे यहाँ, हाँ ऐसे यहाँ लेना है, ध्रुवत्ता भावादो, यहाँ लिखा है ना, दुविहा भावादो नहीं, ध्रुवत्ता भावाद हो चाहिए। यानी ध्रुवत्व के अभाव से। कहीं पर भी ऐसा ही अनंत अनुबंधी के भी बारे में ऐसा ही आया था, निकालो पहले वाली बात। दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छेद देखी थी ना हमने, निद्रा पहला वगैरह, पेज नंबर 31 के आगे होगा। शांतर निरंतर ध्रुव, पेज नंबर 35 पर ने अनंतानुबंधी की बात कहाँ है? मिथ्या दृष्टि में शादी अनादि ध्रुव अध्रुव, आगे तो शादी और अध्रुव ही होते, उसकी तो बात नहीं यहाँ पर। उसकी बात अलग होती है, क्योंकि यहाँ बात अलग है थोड़ी। हाँ, वो चौथे से जाके ही आता है, ये तो ऊपर के जाके आता है, इसलिए ऊपर के गुणस्थानों में अलग बात होती है। यानी ये धुवत्ता भावादो ऐसा चाहिए, दुविहा भावादो के बदले धुवत्ता भावादो, क्योंकि वहां ध्रुवबंध का अभाव है, ऐसा लेना है उसमें। मैंने आपको 49 पर बताया था ना। रेफरेंस पेज 49, और उसका ट्रांसलेशन उन्होंने ऐसा किया था, ट्रांसलेशन भी देख लो 49 पेज पर, नया पैराग्राफ है ना चौथी लाइन से, उसमें दूसरी लाइन है, ऊपर से पांचवी लाइन हिंदी में, शेष गुणस्थानों में इनका बंध तीन प्रकार का है क्योंकि वहां ध्रुव बंध नहीं होता, ऐसे यहाँ चाहिए। तो वहां ध्रुव बंध का अभाव, दो प्रकार के नहीं, ध्रुव बंध का अभाव है। नहीं तो टोटल तीन और दो पांच हो जाएंगे, है ना, समझ में आई बात। आगे बढ़े, लक्ष्मी ख्याल में आई ना बात। हाँ, यानी मिथ्यात्व को छोड़कर जो है सासाधन वाले को कैसा है, वो सादी है, अनादि भी है सादी भी है, इस तरह से लेना, परंतु ध्रुव नहीं है। आगे पुरी सवेद कोद संजलनानम को बंधो को अबंधो, मोहिनी की बात चल रही थी, पहले हमने अनंतानुबंधी देखा, फिर विथ्यात्व देखा, अप्रत्याख्यान देखा, प्रत्याख्यान देखा, अब पुरुषवेद और संज्वलन को ले ले। पुरुषवेद कोद संज्वलनानम को बंधो को अबंधो, पुरुषवेद और क्रोध संज्वलन को, संज्वलन क्रोध को कौन बंधक और कौन बंधक है, कहाँ चाहिए, कहाँ ही है, पुरुषवेद और क्रोध संज्वलन, संज्वलन क्रोध का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। अब इसमें सारे प्रश्न गर्भित है। कहते हैं मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव अनियट्ठी बाद्र सांप्राय पविठ उमा खवा बंधा, अनियट्ठी बाद्र धाये शेषे संखेजा भागम गंतुण बंधो ओच्छिज्यति, एदे बंधा अवशेषा अबंधा। कहते इन दोनों प्रकृतियों के मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण बादर सांप्रायिक प्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक तक बंधक हैं। अनिवृत्ति बादर काल के शेष रहने पर संख्यात बहुभाग जाकर इनका बंध विच्छेद होता है। ये जीव बंधक है, शेष जीव अबंधक है। देखो तो हम तो उसके पांच भाग करते, तो एक तो सवेद भाग, फिर क्रोध जाता है, मान जाता है, माया जाता है, वो पांचवा भाग नहीं है, संख्यात बहुभाग लिया तब जाके वो अपगत वेदी होता है। ये इससे ही पता चलता है ना, संख्यात बहुभाग जाकर। देखो मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के संख्यात बहुभाग तक उपशमक और क्षपक बंधक हैं। देखो वेद का उपशम कहो या वेद का क्षय कहो, कब होता है? पहले भाग में नहीं चाहिए, अंतरकरण करने के पहले होता है कि बाद में होता है? अंतर कितने प्रकृतियों में किया जाता है? 21 में, तो पहले कैसे होगा? और जो हम कहते हैं उदय रूप दो प्रकृतियों की रचना होती है, 21 प्रकृतियों में तो उसमें से दो ही प्रकृतियों में अंतर छोटा होता है, बाकी प्रकृतियों में अंतर बड़ा होता है। यानी एक वेद और एक क्रोध हम कहते हैं, उसकी अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति बनती है, ये तो याद होगा ना आपको। और ये अंतर करने का कार्य कब होता है? तो संख्यात बहुभाग बीतने पर होता है। अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीतने पर अंतर करने का कार्य होता है। जैसे दर्शन मुनि में भी देखा था हमने, अंतर का कार्य कब होता है? संख्यात बहुभाग बीतने, और उसके बाद इसका उदय है कुछ काल तक, और बाद में उसका उदय मिटेगा, तब तक उसका बंध भी है, इसलिए संख्यात बहुभाग जाकर कह दिया। ख्याल में आई ना? हम उसका अपने जो मालूम है उसके साथ टैली कर सकते हैं। क्योंकि अंतरकरण के पश्चात जाके इसका होता है ना, अंतर्मूर्त पश्चात, क्योंकि अंतर्मूर्त तक उदय रहेगा उसका, क्योंकि अंतरकरण पहले होगा, बाद में एक एक नपुसक वेद का उदय मिटेगा, फिर स्त्री वेद का जो कुछ उसकी उपशम, उदय नहीं उपशम होगा, इसका उपशम होगा या क्षय होगा, फिर पुरुष वेद का होगा, और जब तक उसका उदय है तब तक उसका बंध भी होता रहेगा, ये भी हमने देखा था। अब आगे देखते हैं, मिथ्या दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के संख्यात बहुभाग तक उपशमक और क्षपक बंधक है। इस सूत्रावयव से, यानी सूत्र का ये अवयव है, उससे गुणस्थानगत बंध स्वामित्व और बंध अध्वान का निरूपण किया जाता है, कहां से कहां तक, और उसी में उसका स्वामी समझ में आ जाता है। अनिवृत्तिकरण बादर काल के शेष रहने पर संख्यात बहुभाग जाकर बंध विच्छिन्न होता है, इससे बंध विच्छेद स्थान का निरूपण किया है। अन्यत्र अन्य कितने ही जो प्रकृतियां अभी तक देखे उस गुणस्थान के अंत तक बनती है। अब ये नवे गुणस्थान में अलग अलग प्रकृतियों का बंध विच्छेद अलग अलग पोजिशन में हो रहा है, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। वही इस प्रकार है, शेष अर्थात देखो यहाँ अंतरकरण की बात आई, मुझे इसे याद था, अर्थात अंतरकरण करने पर जो अवशेष अनिवृत्तिकरण काल है उसमें भी देखो 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 उस शेष काल के संख्यात खंड करने पर उनमें बहुत खंड जाकर एक खंड अवशेष रहने पर पुरुष वेद और क्रोध संज्वलन का बंध विच्छिन्न होता है, ये उसका अभिप्राय। मैंने तो पूरे अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग कहा, क्योंकि संख्यात बहुभाग जाने पर अनिवृत्ति ये अंतर होता है, अंतर के बाद भी जो शेष बचा काल है उसमें भी बहुभाग बीतने पर ये उदय का बंध यानी वेदों का बंध रुकता है, फिर और क्रोध का बंध रुकेगा, यानी बहुत बड़ा काल चला जाएगा पहले, ये महत्व की बात है। यानी इसलिए शेष काल को लेने अंतर के बाद भी शेष कर, ये तीन ही अर्थ इस सूत्र द्वारा कहे गए हैं, अतएव यह देशामर्शक सूत्र है, इसी कारण इसके अन्य अर्थों की प्ररूपना की जाती है। पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध, इनके बंध व उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं, क्योंकि जहां तक पुरुष वेद का उदय है वहां तक ही उसका बंध है, जहां तक क्रोध का उदय है वहां तक उसका बंध है, बाद में मान का बंध काल वगैरह जो बातें चालू हो जाते, वहां क्रोध मान माया लोभ पहले सभी बंध रहे थे, बाद में केवल मान माया लोभ तीनों ही बंधेंगे। पुरुष वेद का साथ पुरुष वेद, क्रोध के साथ क्रोध, अपने अपने उदय साथ, दूसरे प्रकृतियों के उदय के साथ कंपेयर नहीं करना है। पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध, इनके अपने अपने बंध और उदय, हाँ, इनके बंध व उदय दोनों साथ विच्छिन्न होते, पुरुष वेद का बंदर उदय साथ में विच्छिन्न होता है, संजुलन क्रोध का बंदर उदय साथ में विच्छिन्न होता है, ये उसका अर्थ है। क्योंकि पुरुष वेद और क्रोध संज्वलन क्रोध के उदय के सत्व क्षय से या उपशम से नष्ट होने पर, यानी वो उदय का नष्ट होना कैसे हो सकता है, उपशम से भी नष्ट हो सकता है और क्षपणा से भी हो सकता है। पुरुष वेद का उदय के नष्ट होने पर, अभी दो ये डालो उसमें कॉमन कॉमा, हाँ दोनों लेने क्षपणा, यानी उदय कैसे, ये देखो ये बीच वाले दो शब्द निकाल के मैं वाक्य पढ़ती हूँ। संज्वलन क्रोध के उदय के नष्ट होने पर उन दोनों का बंध नहीं पाया जाता। पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध का अपना अपना उदय नष्ट होने पर उनका अपना अपना बंध नहीं पाया जाता। अब ये उदय का जो नष्ट होना है वो कैसे हो सकता है, तो सत्व क्षय से या उपशम से, इसलिए दो बार वो कॉमा डालो तो आपको इन्हें ऐसा पढ़ना, पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध के उदय के सत्व क्षय से या उपशम से, फिर एक कॉमा डालो, नष्ट होने पर, यानी उदय नष्ट होने के दो कारण, उपशम हुआ इसलिए उदय नहीं है या क्षय हुआ इसलिए उदय नहीं, दोनों का बंध नहीं पाया जाता। फिर शंकाकार पूछ रहे हैं, संसार अवस्था में स्वोदय के बिना भी बंध पाया जाता है, क्या कहते हैं? पुरुष वेद का जो बंध है नीचे के गुणस्थानों में, नपुसक वेद के उदय में भी और स्त्री वेद के उदय में भी पुरुष वेद का बंध पाया जाता है, और संज्वलन क्रोध का जो बंध है मान माया लोभ के उदय में भी पाया जाता है, ये तो मालूम है सबको। अतएव इनका बंध स्वोदय का अविनाभावी नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। ऐसी शंका करने पर उत्तर देते हैं कि संसार अवस्था में वैसा भले ही हो, संसार अवस्था में जब तक तो वो श्रेणी की बात नहीं करे तब तक तो भले ही हो, क्योंकि वहां ऐसा इष्ट है, वहां तो हम कहेंगे स्वोदय से भी और परोदय से भी बनती है, परंतु यहां पर प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के बिना बंध विच्छेद स्थान में ही उदय का विच्छेद होने से, क्या कहते हैं, जब उसके प्रतिपक्ष का प्रकृति का बंध ही नहीं हो रहा है, उदय तो चल रहा है, ये पुरुष वेद का जो बंध है जब से समय दृष्टि हुआ था, क्योंकि वो तो नपुसक वेद पहले गुण स्थान में बनते, स्त्री दूसरे तक बन सकते, उसमें अल्टरनेटली जो कुछ है, तीसरे से आगे तो पुरुष वेद ही सतत बंध रहा है, इसलिए वो यहाँ पर ऊपर के गुण स्थानों में अपने उदय में ही बंध रहा है, पर के उदय में वो बंध रहा है उसकी बात नहीं है, यानी बंध तो इसी का चल रहा है निरंतर। फिर से इसको पढ़ रहे, देखो यहाँ पर प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के बिना, यानी यहाँ स्त्रीवेद और नपुसक वेद का बंध नहीं हो रहा है, उसके बिना बंध विच्छेद स्थान में ही उदय का विच्छेद होने से, यानी इसके अन्य का तो बंध नहीं हो रहा है और इसके बंध का विच्छेद कहाँ होता है, जहां इसका उदय का विच्छेद है, एक काल में दोनों का विच्छेद विरुद्ध नहीं है, ये एक साथ दोनों का विच्छेद होता है ये कहना विरोध नहीं है, ये इतनी बात है। इन दोनों प्रकृतियों का स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि स्वोदय के बिना भी उनका बंध पाया जाता है, जिसके पुरुष वेद का उदय नहीं है, स्त्री नपुसक वेद का उदय है नवे के पहले भाग तक जो, तो वहां तो इसका बंध पाया जाता है। संज्वलन क्रोध का बंध निरंतर है, क्योंकि वह 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियों के मध्य में आता है, और ये पुरुष वेद प्रकृति कैसी थी, वो तो प्रतिपक्षी थी, नीचे के गुण स्थानों में तो शांतर होगी होती थी, पुरुष वेद का बंध शांतर है, इसका कारण यह है मिथ्या दृष्टि और साधारण गुण स्थानों में प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। मिथ्या तो गुणस्थान में तो तीन में से एक, साधारण में तो स्त्रिया, पुरुष वेद में से एक बंध रहा है, इसका बंध निरंतर भी है, भी कहा हाँ, क्योंकि पद्म एवं शुक्ल लेशा वाले तिर्यंच व मनुष्य मिथ्या दृष्टि और साधारण समय दृष्टियों में तथा सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि उपरी गुण स्थानों में भी निरंतर बंध पाया जाता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, पित्त लेशा वाले मनुष्य को छोड़ा, पद्मय और शुक्ल लेशा वाले तीरंज और मनुष्य मिथ्या दृष्टि और शासाधन। अभी सम्यक दृष्टि तो पुरुष वेद का निरंतर बंध करेंगे, वो तो बात सबके लिए, सभी तीसरे गुणस्थान के सभी गतियों वाले जो पुरुष वेद का ही बंध कर रहे हैं, पर यह मिथ्या दृष्टि शासाधन वाले मनुष्यों तीरंजों को भी लिया, वो तो दो गुणस्थान में तो तीनों ही वेदों का बंध होता है, तो यहाँ पद्म और शुक्ल लेशा वालों को क्यों छोड़ा, ये मेरा प्रश्न है। यानी उनमें निरंतर होता है, बाकी में सांतर होता है, छोड़ा है ना उस अपेक्षा से, यानी उसमें अकेले सांतर क्यों लिया, ये आपका प्रश्न है। फिर से पढ़ती हूँ मैं, पद्म एवं शुक्ल लेशा वाले तीर्यंच व मनुष्य मिथ्या दृष्टि और शासाधन सम्यक दृष्टियों में, अभी ये सम्यक मिथ्या तो छोड़ो, ऊपरी गुणस्थानों भी निरंतर बंध पाया जाता है। किसकी, पुरुष वेद की बात कर रहे थे हम, शुभलेशा होने दो ना, तो क्या हुआ, देव पद्मलेशा शुक्लेशा वाले देव भी तो स्त्री वेद बांध रहे हाँ नहीं। देखो देखो, पीतलेशा वाले मनुष्य और तीरंज देवगति का ही बंध कर रहे हैं, तो पीतलेशा में जब वो देवगति का बंध कर रहे हैं तो पीतलेशा में तो देवी भी आ गई, तो वहां स्त्री पुरुष दोनों का बंध होगा। पद्मलेशा वाले जब देवगति का बंध कर रहे हैं उस समय ऊपर के देवों संबंधी बंध चल रहा है, पद्मलेशा वाले कहाँ होते देव, सनत कुमार से लेकर ऊपर, वहां कोई स्त्री नहीं होती है, तो जब वहां की जब आयु बांध रहे या पद्मलेशा में जब वहां की देवगति बांध रहे हैं तब उनके स्त्री वेद का बंध नहीं हो रहा है, जब शुक्ल लेशा सहित देवगति बांध रहे हैं तब उस समय उनके स्त्री वेद का बंध नहीं हो रहा है, ये बात यहां नक्की हो रही है। हाँ, इसलिए पद्म और शुक्ल लेशा वाले तीरंज मनुष्य, क्योंकि ऊपर के देवों उन संबंधी बंध कर रहे, ऊपर के देवों में स्त्रियां नहीं होती, भले आयु नहीं बांध रहे परंतु उस लेशा के परिणाम में उनके वो देवगति के साथ स्त्रीवेद नहीं बंधेगा। यानी उन्होंने बताया हमको उत्तर, हमको उसके डिराइव करनी है, रीजनिंग ढूंढना है, बाकी ऊपर के गुणस्थानों में तो अन्य वेदों की बंध विच्छित्ति होने से पुरुष वेद ही बनता है, वो तो आसान है समझना। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो गुरु। मैं भाई।